मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 17 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने नौजवान साथी रजनीश कुमार का जो पटना बिहार से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों मैं कुछ एक दो सूचनाएं देना चाहूंगा। पहली सूचना तो यह है कि जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के जो पेड स्टूडेंट हैं उनको एक ऑडियो भेजा गया है, है ना। पेड स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि बीच बीच में उन्हें मैं निर्देशित करता रहता हूं उन लेक्चर्स का, कैसे वो उपयोग करेंगे, कैसे अपनी तैयारी को ज्यादा सही रूप दे पाएंगे। तो इसी से संबंधित यह एक छोटा सा ऑडियो है, तो आप सब अपने अपने मेल पर उसे एक्सेस कर लेंगे, देख लेंगे। दूसरी खबर यह है फ्रेंड्स कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज सी आई थी, हालांकि वो बहुत प्रोमिनेंटली नहीं फिर आ पाई और कुछ स्टूडेंट ने ईमेल के जरिए इसका क्लेरिफिकेशन भी चाहा है। क्लेरिफिकेशन इस बात का कि न्यूज आई थी कि यूपीएससी ने एक ऑर्डर निकाला है और उसमें कहा गया है कि जो 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स होने हैं तो उस प्रीलिम्स में उन्हीं स्टूडेंट को बैठने दिया जाएगा जो कोरोना टेस्ट करा करके आएंगे और जिनका टेस्ट निगेटिव होगा। स्वाभाविक है कि इसको लेकर के मन में एक जिज्ञासा, उत्सुकता का भाव स्टूडेंट्स के मन में था। अभी जो इसकी वर्तमान स्थिति है दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने, जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसने एक प्रेस रिलीज जारी करके इसका स्पष्टीकरण दिया है कि आयोग ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है, कोई आदेश जारी नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं दो महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ एक दो दूसरी बातें कर लेते हैं। सोमवार को मैं जनरली कोरोना पर थोड़ी सी बातें आप सबसे शेयर करता हूं। आज कुछ ज्यादा शेयर करने के लिए नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो ये कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये कहा है कि वैक्सीन लगातार तैयार की जा रही है और 3 वैक्सीन बकायदे परीक्षण के स्टेज पर हैं और बहुत जल्दी ही हम वैक्सीन लेकर के आ जाएंगे और हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि उस वैक्सीन का पूरे देश में किस तरीके से वितरण होगा। इस तरीके से उन्होंने देश को एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया है और मुझे लगता है कि हमें इस आश्वासन पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए कि एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और दूसरा 15 अगस्त जैसे पवित्र अवसर पर सार्वजनिक रूप से लाल किले से दे रहे हैं, क्योंकि उस स्थान की अपनी एक अलग, आप यूं कह लीजिए, पवित्रता है, उसका अपना एक अलग मूल्य है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी राहत देने वाली बात उन्होंने कही है। फिर आप न्यूज वगैरह में देख ही रहे हैं कि जो स्वस्थ होने की दर है वो धीरे 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 बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं। जो मृत्यु दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, हालांकि मृत्यु दर कम होने की रफ्तार परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत थोड़ी सी दिखाई देगी, लेकिन देखिए कि पेशेंट की संख्या भी तो लगातार बढ़ती जा रही है ना। जब पेशेंट की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसमें से टोटल जो स्वस्थ होने वाले लोग हैं उनकी संख्या तो बहुत है, लेकिन जब आप प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रतिशत में बहुत कम बैठेगी। इसलिए अगर थोड़ा सा भी डाउनफॉल आता है, थोड़ा से भी अगर प्रतिशत घटती है मृत्यु दर, तो आप मान करके चलिए कि वह एक बेहतर सफलता है। तो दोस्तों धीरे धीरे हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि शायद कोरोना पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लेंगे। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। मैंने जानबूझ करके आप लोगों को इसके बारे में नहीं कहा था कि आप उस भाषण को सुनिएगा। उसका कारण यह है कि देखिए मेरा तो ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है पिछले 5 साल से भी अधिक समय से आ रहा है, 5.5 साल होने जा रहे हैं, और मैं हर बार इसके बारे में बताता था। इस बार मैंने जानबूझ कर नहीं बताया। उसके 2 कारण थे। पहला तो यह है कि जो स्टूडेंट मुझे साल भर से अधिक समय से सुन रहे हैं वो इस बात का जायजा लें कि उन्होंने सुना या नहीं सुना, और अगर नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना। क्या इसलिए नहीं सुना क्योंकि मैंने उन्हें याद नहीं दिलाया, और अगर मैंने उन्हें याद नहीं दिलाया तो क्या उन्हें नहीं सुनना चाहिए था, क्या मुझे बार बार उन्हें याद दिलाना ही चाहिए। इसके बारे में वो थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करें, कि उन्हें सुना या नहीं सुना, और अगर नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना। जहां तक अब नए स्टूडेंट का सवाल है, जिन्होंने इससे पहले 15 अगस्त का दौर नहीं आया होगा जब वो मुझे सुन रहे होंगे, तो उनके लिए मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण ऑलरेडी आप कभी भी सुन सकते हैं। हम लोगों का वो दौर खत्म हो गया कि न्यूज चली गई तो चली गई, अब आप नहीं सुन सकते। प्रधानमंत्री जी का भाषण चला गया तो चला गया, अब आप नहीं सुन सकते, अब तो आप कभी भी सुन सकते हैं। तो ऐसे जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं सुना है, उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि वो प्रधानमंत्री जी के भाषण को पूरी तरह से सुने, और सुनना ही चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री का जो पद है हमारे देश के कार्यकारी का, या आप कह लीजिए कि सर्वोच्च पद है, नो डाउट कि फर्स्ट सिटीजन के रूप में, और यदि हम प्रोटोकॉल की दृष्टि से देखेंगे तो राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है, लेकिन जब हम कार्यकारी व्यक्ति के रूप में देखेंगे, अधिकारी के रूप में देखेंगे, शक्तियों के रूप में देखेंगे, तो प्रधानमंत्री के पास होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप राष्ट्रपति जी का जो राष्ट्र के नाम उद्बोधन था उसे भी अनिवार्य रूप से सुने ही, लेकिन अगर सुने तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए जो सरकार होती है वो तो राष्ट्रपति की ही होती है, तो राष्ट्रपति का भी जो संबोधन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, राष्ट्र की जो उपलब्धियां हैं, राष्ट्र के लिए जो कल्पनाएं हैं, उन पर ही केंद्रित होता है, और प्रधानमंत्री जी का भी भाषण उन्हीं पर केंद्रित होता है। तो अगर आप चाहें तो राष्ट्रपति जी का भी सुन सकते हैं, जो खासकर पूर्व संध्या पर आता है, 14 अगस्त को आया है, फिर 15 अगस्त का भाषण तो आपको सुनना ही चाहिए। ये आप यूं कह लीजिए कि जब तक आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तब तक आप ऐसा करते रहेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या कहते हैं, खासकर दो तथ्य होते हैं। एक तो हो सकता है कि वो अपने उपलब्धियों के बारे में बताएं कि पिछले कुछ सालों में हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है वो भविष्य की रूपरेखा वो प्रस्तुत करते हैं कि भविष्य में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं मालूम, राजनीतिक दृष्टि से आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के विरोधी हो सकते हैं, व्यक्ति के विरोधी हो सकते हैं, वो बिल्कुल अलग बात है, वो हम सबका अपना अपना निजी मामला होता है, और ठीक है, वो होना भी चाहिए क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही साथ हमारा एक सामूहिक दायित्व तो भी है, एक नागरिक अधिकार भी है, नागरिक दायित्व तो भी है। उसके तहत डेफिनेटली प्रधानमंत्री का पद हमारे अपने निजी, जो हमारी इच्छा अनिच्छा, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उससे परे होना चाहिए, और हमें बहुत तटस्थ होकर के उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए जो हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, या यूं कह लीजिए कि देश ने जिनके हाथ में देश की लगाम थमा रखी है। और खासकर अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, इसमें जो दो बातें हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम हुई, दो बातें। पहली बात तो उन्होंने जो एनसीसी है हमारा, नेशनल क्रेडिट कोर, उसके विस्तार की बात कही, और इसके बाद फिर रक्षा मंत्री जी ने उसे बकायदे उसके लिए अपना आदेश जारी भी कर दिया कि हमारी जो एनसीसी है वह हम एनसीसी का विस्तार करेंगे, और विस्तार करने के लिए उन्होंने बकायदे कुछ तथ्य दिए हैं। सबसे पहली बात आपको जान लेना चाहिए कि ये जो एनसीसी का जो विस्तार होगा वो हमारे जो 173 जिले हैं, लेकिन कौन से जिले, जो या तो समुद्रीय तट पर हैं या सीमावर्ती जिले हैं, वहां इसका विस्तार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र तट पर आप देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है ना, तूफान वगैरह लगातार आते रहते हैं, और सीमावर्ती जो जिले हैं वो सीधे सीधे हमारे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो यहां तैयार किए जाएंगे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, उनका विस्तार किया जाएगा, लगभग 1,00,000 कैडेट तैयार किए जाएंगे, इसमें से 33% 1/3 लड़कियां होंगी, 1,000 स्कूल और कॉलेजेस जिसके लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं, और इनको तैयार करने की और जो प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो हमारे सेना के जो 3 अंग हैं, जो भी वहां जिसके लिए सुविधाजनक होगा, वायु सेना, नौ सेना, जैसे तटवर्ती जिले हैं तो डेफिनेटली वहां नौ सेना की पहुंच ज्यादा अच्छी होगी, और खासकर आपकी जो सेना होती है, ये उन्हें सुविधाएं देंगे, उन्हें तैयार करेंगे, और राज्यों के सहयोग से ये काम किया जाएगा। आपके सिलेबस में दोनों चैप्टर्स हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, अब आप देखिए कैडेट उसमें काम करेंगे, और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन, तो ये कैडेट आपदा प्रबंधन में भी काम करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे, ये जो दोनों टॉपिक है, इसे अपडेट कर लें। जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है फ्रेंड्स, वो है डिजिटल नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर, डिजिटल हेल्थ मिशन। इस पर जब भी आपको कुछ पढ़ने को मिले आप डेफिनेटली नोट कर लें और उसे पढ़ें। ये जो योजना है ये बहुत सिंपल सी है, डिजिटल हेल्थ मिशन, डिजिटल नेशनल, पूरी तरह से डिजिटल नेशनल हेल्थ मिशन, यानी कि यह राष्ट्रीय स्तर की योजना है। इसमें होगा क्या, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब देखिए, अभी होता क्या है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेकर के आ जाते हैं, वो पर्चा लिख देता है, हम दवाई खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, इसके बाद उस पर्चे का पता नहीं होता, वो गायब हो जाता है। एक दो साल के बाद फिर बीमार पड़ते हैं, किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ट्रांसफर हो गया तो वहां तो बिल्कुल नया डॉक्टर है, नया अस्पताल है, तो हमारे पास अपने हेल्थ का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि हम उन पर्चों को संभाल करके तो रखते नहीं हैं, कोई नहीं रखता। ज्यादातर आप देखेंगे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी संभाल करके नहीं रखते। तो अब क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वह बकायदे आपका रिकॉर्ड डिजिटली फॉर्म में, या यूं कह लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, कि वो कंप्यूटर में डाल देगा। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा रिकॉर्ड है वो कंप्यूटरीकृत होता चला जाएगा, बकायदे वो डेटा अवेलेबल होगा। अब आपका, आपके पास जैसे आप एक ईमेल जैसा एड्रेस होता है ना, उस तरह से एक नंबर होगा, आप वो नंबर डालिए, आपका पूरा रिकॉर्ड, आपका जो, आपकी जो हेल्थ की जो हिस्ट्री है वो आ जाएगी। अब आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप उस नंबर को डालिए, आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड डॉक्टर को मिल जाएगा। तो डॉक्टर ये जान सकेंगे कि भाई आपका रिकॉर्ड किस तरीके का रहा है, किस तरीके की बीमारियां आपको होती रही है, तो वो जो आपको प्रिस्क्राइब करेगा या जो इलाज करेगा वो अधिक साइंटिफिक होगा, अधिक फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिजिटल नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है। इसे आप सीधे सीधे कह दीजिए, स्वास्थ्य संबंधी डेटा डिजिटल फॉर्म में रखना, बस सिंपल सा इसका उद्देश्य है, लेकिन यह बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। देखिए, सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि मैं बीमार हूं और थोड़ा सा क्रिटिकली बीमार हूं, लेकिन उसका इलाज मेरे अपने शहर में नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए वो दिल्ली में हो सकता है, तो दिल्ली में कोई डॉक्टर है, जानकारी है मेरे, तो आप उस डॉक्टर को अपना पूरा का पूरा रिकॉर्ड भेज दीजिए, तो हो सकता है कि उस रिकॉर्ड को देखने के बाद डॉक्टर सही प्रिस्क्रिप्शन बता सके कि आप ऐसा कर लीजिए। तो जितने भी हमारे इस तरह के प्रिस्क्रिप्शंस होंगे, जितने भी बीमारियों के बारे में जो हम टेस्ट रिपोर्ट वगैरह लेते हैं, एक्सरेज वगैरह, वो सारे के सारे वहां अवेलेबल होंगे, तो हम दुनिया में किसी भी डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डिजिटल का एक बहुत बड़ा लाभ या कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा लाभ हेल्थ सेक्टर में अब भारत लेने की स्थिति में आ गया है। कुछ राज्यों यूटी में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है, खासकर यूनियन टेरिटरी में शुरुआत की गई है, पुंडिचेरी में भी शुरुआत कर दी गई है, और धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों, चूंकि एक ये जो टॉपिक है ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं, अलका चंदर पंजाब से, आशु जायसवाल और प्रीति ठाकुर, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।